जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वन चारी, यमुना तीरा वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Thank you. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Thank you. प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नितय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौरा हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतहिष्टवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामयी की जय श्री पुरुषोत्तम अधिक मास की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्या ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಇಸ್ ಪಾವನ್ ಸಮಯ ಪರ್ ಇಸ್ ಮಹಿನೆ ಕೆ ಅಂತಿಮ ಆಠ ದಿನೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಯೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಯ ಭಾಗವತ್ ಕಥಾ ಜೊ ಸಂಪನ್ನ ಕಿಯಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋಕುಲಾನಂದ ಮಂದಿರ್ ಮೆ ಇಸ್ ಮೆ ಆಪ್ ಸಬ್ ಕಾ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಔರ್ ಬಲ್ಕೆ ವೈದಿಕ ಸಭ್ಯತಾ ಕೆ ಅನುಯಾಯಿಯೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಹುತ್ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಹೈ. ಯದಿ ಕೋಯಿ ವೈದಿಕ ಸಭ್ಯತಾ ಕಾ ಪಾಲನ್ ನಹೀ ಭೀ ಕರ್ ರಹಾ ಹೋ ವೋ ನಹೀ ಭೀ ಮಾನ್ತಾ ಹೋ ವೇದೋ ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಫಿರ್ ಭೀ ಐಸಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೀ ಯದಿ ಇಸ್ ಮಹಿನೆ ಮೇ ಕೋಯಿ ಐಸೆ ಭಕ್ತಿ ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ ಲೇತಾ ಹೈ ತೋ ಉಸೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಾ ಹೈ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಹಿನಾ ಬಹುತ್ ಹೀ ಪಾವನ್ ಮಹಿನಾ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ವಿಶೇಷ ಕರ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಕೆ ಕಾರ್ಯೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಫಲ ಪ್ರದಾನ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ಯೆ ಮಹಿನಾ ಹೈ. ಶಾಸ್ತ್ರೋ ಮೇ ಐಸೆ ಬತಾಯಾ ಗಯಾ ಹೈ ಕಿ ಇಸ್ ಮಹಿನೆ ಮೇ ಅಧಿಕ ಸೆ ಅಧಿಕ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಪವಿತ್ರ ನಾಮೋ ಕಾ ಕಥಾಓ ಕಾ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಆದಿ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಸೇವಾ ಅಧಿಕ ಮಾತ್ರಾ ಮೇ ಕರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೆ. ವೈಸೆ ಯೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಇಸ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಹಮ್ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮೇ ಕುಛ ಪ್ರಾರಂಭ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹೆಂಗೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಕಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ ಮೇ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ ಫಿರ್ ಹಮ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಭೀ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ ಮೇ ಕರ್ನಾ ಚಾಹೆಂಗೆ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಇಸ್ ಮಹಿನೆ ಮೇ ಭಾಗವತ್ ಕಥಾ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ್ ಸ್ಮರಣ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಕೆ ಪಥ ಮೇ ಹಮ್ ಸಬ್ ಬಹುತ್ ಶೀಘ್ರ ಹೀ ಪ್ರಗತಿ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ. ತೋ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕಿ ಕಥಾ ಇಸ್ ಮಹಿನೆ ಮೇ ಬಹುತ್ ಮಾಯನೆ ರಖತಾ ಹೈ ಹಮ್ ಸಬ್ ಕೆ ಲಿಯೆ. ಇಸಿಲಿಯೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಇಸ್ ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಭೀ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮೇ ಹಮ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರೆಂಗೆ ಆಜ್ ಔರ್ ಕಲ್ ಭೀ ಥೋಡಾ ಬಹುತ್ ಔರ್ ಭಾಗವತ್ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಕರೆಂಗೆ. ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಇನ್ ಬಾಕಿ ಕೆ ಆಠ ದಿನೋ ಮೇ ಸಾತ್ ದಿನೋ ಮೇ ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಆಜ್ ಕೆ ದಿನ ಕೆ ಬಾದ್ ಫಿರ್ ಹಮ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ ಕೆ ನೌವೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಕರೆಂಗೆ. ಇಸ್ ನೌವೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಹೀ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ವಿಷಯ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ನೆ ಕಿಯಾ ಹೈ ಔರ್ ವೋ ಹೈ ಶ್ರೀಲ ಭೀಷ್ಮ ದೇವ್ ಕಾ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ. ಹಮ್ ಸಬ್ಕೋ ಇಸ್ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಆಜ್ ನಹೀ ತೋ ಕಲ್ ದೇಹ ತ್ಯಾಗನಾ ಹೋಗಾ. ಪರಂತು ದೇಹ ಕೈಸೆ ತ್ಯಾಗೆ ಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಠತಾ ಹೈ. ಭಕ್ತ ಔರ್ ಅಭಕ್ತ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ ದೇಖಾ ಜಾಯ್ ತೋ ಕೋಯಿ ಅಂತರ್ ಪ್ರತೀತ ನಹೀ ಹೋತಾ ಹೈ. ಜೋ ಭೀ ದೈನಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭಕ್ತ ಕರ್ತೆ ಹೈ ವೋ ಭಕ್ತ ಭೀ ಕರ್ತೆ ಹೈ. अभक्त लोग खाते हैं, सोते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, भक्त लोग भी ऐसा ही करते हैं, परंतु अंतर बहुत बड़ा है। मृत्यु का सामना भक्त जिस तरह से करता है वैसे अभक्त नहीं करता, और इससे अधिक मृत्यु के बाद क्या होता है, कौन सी गति दोनों को प्राप्त होती है, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो इस बारे में दोनों में, भक्त और अभक्त में, बहुत बड़ा अंतर है। शास्त्र में बताया गया है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसके लिए मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसके लिए जन्म निश्चित है। तो हम सब ये जन्म मृत्यु के चक्र में अटक के पड़े हैं, और मनुष्य जीवन का ध्येय है कि हम इस चक्र से मुक्त हो जाएं। और मृत्यु का सामना हम किस तरह से करते हैं, इस अंतिम काल में हमारी चेतना कैसी रहती है, हमारी अगली गति इस पर निर्भर होगी। श्रीमद् भागवत में, अन्य ग्रंथों में भी ऐसे अनेक महाभागवत भक्तों के देह त्याग का वर्णन आता है, जिसका पाठ और श्रवण करने से हमें ये ज्ञात होता है कि हम कैसे देह त्याग सकते हैं, हमें कैसे चेतना से, किस चेतना से हमें देह त्यागना चाहिए, कैसे आदर्श मृत्यु के लिए तैयारी करनी चाहिए। ये जीवन की अंतिम परीक्षा है। जो भी हम काम जीवन भर करते हैं उसकी परीक्षा अंतकाल में अर्थात मृत्यु के समय होती है। एक व्यक्ति की पहचान वैसे विशेष करके मृत्यु के समय होती है। मृत्यु के बाद उसकी कैसी गति प्राप्त होती है इससे हम जान सकते हैं कि वो पुण्यवान है या नहीं। इसलिए ये जो अध्याय है, नौवा अध्याय श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध का, हम एक सप्ताह पूर्ण चर्चा करने का प्रयास करेंगे श्रीमद् भागवत से, साथ साथ श्रीमद् भागवत की कथा से हम महाभारत की कथाओं को भी मिलाएंगे, क्योंकि भीष्म देव के चरित्र का वर्णन, उनके गुणों का वर्णन, उनके देह त्याग का वर्णन बड़े विस्तार में महाभारत में भी किया हुआ है। तो श्रीमद् भागवत और महाभारत, इन दोनों की कथाओं को मिलाकर भीष्म देव का गुण गौरव करने का प्रयास हम आने वाले एक सप्ताह में करेंगे। परंतु प्रारंभ में पुरुषोत्तम मास के बारे में हम कुछ कहना चाहेंगे। वैसे आप तो जानते हैं कि 12 चंद्रमास होते हैं, और हर एक चंद्रमास में लगभग 29.5 दिन होते हैं। चंद्रमास तिथियों के हिसाब से माना जाता है, और ऐसे 12 चंद्रमास जब होते हैं तो लगभग 354 दिन हो जाते हैं, जो कि एक पूर्ण वर्ष होता है। परंतु सौर मास की दृष्टि से यदि गणना की जाए तो फिर एक वर्ष 365 दिन का लगभग होता है। इसलिए दोनों वर्षों में 11 दिन का अंतर होता है, दो वर्षों में 22 दिन का अंतर, और फिर कई महीनों के बाद में, 7-8 महीनों के बाद फिर और 7-8 दिन अधिक हो जाते हैं। तो जब दोनों वर्षों में 29.5 दिन का अंतर बन जाता है, उस समय एक अधिक मास जोड़ा जाता है। यह भी एक चंद्रमास है, परंतु अधिक मास होता है, जिससे कि दोनों वर्ष जो हैं फिर से मिल जाए, दोनों में तालमेल ठीक तरह से हो सके, ताकि उपयुक्त समय पर, सही समय पर हर अनुष्ठान को मनाया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि वर्षा ऋतु में मनाया जाने वाला कोई उत्सव शरद काल में मनाया जाए, या ग्रीष्म काल में मनाया जाए, या हेमंत ऋतु में मनाया जाए। इसलिए इन दोनों वर्षों का तालमेल लगभग 2.5 से 3 वर्षों के बीच में एक बार किया जाता है। वैसे 19 वर्षों में 7 अधिक मास आते हैं, इसलिए इसे अधिक मास कहा जाता है। कर्म कांड के दृष्टि से इसे मल मास कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य समाज में बड़ी कृपा करके ये वेद शास्त्र प्रदान कर दिए हैं। वेद अर्थात ज्ञान, समस्त प्रकार का ज्ञान वेद शास्त्रों में उपलब्ध है। भगवान ने वेदों का विभाजन किया है, 4 वेद हैं, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, और हरेक वेद के साथ साथ भी अनेक ग्रंथ हैं, अरण्यक हैं, ब्राह्मण हैं, उपनिषद हैं, और इनके अलावा पुराण हैं, इतिहास हैं, न्याय प्रस्थान जैसे वेदांत सूत्र आदि है। तो जब हम वेद कहते हैं तो इस एक शब्द वेद के अंतर्गत अनेक शास्त्र सम्मिलित हैं। तो भगवान ने मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए, मनुष्यों को सही ज्ञान प्रदान करने के लिए ये शास्त्र प्रदान किए हैं। वैसे इन शास्त्रों का अंतिम उद्देश्य है कि मनुष्य को वो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाए और भगवान श्री कृष्ण के धाम में पुनः लौटा दे। साथ साथ इन शास्त्रों में ये ज्ञान भी दिया हुआ है कि हमें कैसे इस दुनिया में रहना चाहिए। तो भगवान ने न केवल उनके धाम की बात की है, परंतु उन्होंने इस भौतिक सृष्टि की बात भी की है बड़े विस्तार में। ऐसे अनेक लोग होते हैं जो अपने जीवन के लक्ष्य को भोग समझते हैं, वो सोचते हैं कि भोग करना ही बस यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, जितना हो सके हमें भोग करना चाहिए। न वो भगवान को मानते हैं, न किसी अधिकारी व्यक्ति को मानते हैं, मनमाने ढंग से अपना जीवन जीते हैं और तरह तरह के पाप करते हैं, इसलिए उनकी गति अच्छी नहीं होती है। नरक योनि की प्राप्ति, नरक लोगों की प्राप्ति होती है, निम्न श्रेणी के योनियों की प्राप्ति होती है। इस दुनिया में हर एक जीव भोग करने के लिए ही आया है। भगवान से विमुख होकर भोग करने के लिए प्रत्येक प्राणी यहां अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाह रहा है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिर्जायगुणाय कारणं गुणसंगोऽस्य सदसत् योनि जन्मसु। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि जब जीव भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करना चाहता है तो 84 लाख योनियों में उसे बार बार भ्रमण करना पड़ता है। तो जब भोग करने के पश्चात ऐसी योनि प्राप्त होती है तो विरला ही पुनः कोई मनुष्य देह प्राप्त होता है। तो भोग करने की प्रवृत्ति बद्ध जीव में बहुत तीव्र होती है, तो भगवान ये भली भांति जानते हैं, इसलिए बड़ी कृपा करके उन्होंने वेद शास्त्रों में ऐसे भी कोई ग्रंथ दिए हैं जिस वर्ग को कर्म कांड कहते हैं, जिनमें ऐसे ग्रंथ हैं जो मनुष्य को बतलाते हैं कि कैसे अधिकृत ढंग से भोग किया जा सके पाप किए बिना। और धीरे 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 से जब व्यक्ति इन कर्मकांडीय वैदिक शास्त्रों के का पालन करते हुए भोग करेगा, एक न एक दिन वो इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि भोग ये जीवन का ध्येय नहीं है, इससे परे भी कुछ और है और मुझे भगवान की प्राप्ति अब करनी चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को पूरी तरह से नहीं जानते, भगवान को केवल एक निराकार ज्योति के रूप में जानते हैं। तो फिर ऐसे लोगों के लिए जो ग्रंथ हैं वो भी वैदिक शास्त्रों के अंतर्गत हैं, इसको ज्ञान कांड कहते हैं। परंतु जब व्यक्ति इसके भी परे हो जाता है और समझ लेता है कि अंततः भगवान एक व्यक्ति हैं, परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण का नाम भी पुरुषोत्तम है, तो भगवान श्री पुरुषोत्तम के शरण में हमें जाना चाहिए। तो फिर वो उपासना कांड या भक्ति के पथ को स्वीकार करते हैं। तो जो सनातन धर्म का पालन करते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, चाहे वो कर्म कांडी होते हैं, उपासना कांडी होते हैं, ज्ञान कांडी होते हैं। तो विशेष करके जो कर्म कांड का पालन करने वाले लोग हैं वो तो भोग चाहते हैं, परंतु इस महीने में, इस अधिक मास में वैसे कोई शुभ तिथि नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है, कोई धार्मिक अनुष्ठान इस महीने में संपन्न नहीं किया जा सकता। कर्मकांडीय ग्रंथों में जिन सकाम कर्मों का वर्णन है वो इस महीने में नहीं किए जा सकते, क्योंकि ऐसे सकाम कर्म फल प्रदान नहीं करते हैं इस महीने में। तो जो व्यक्ति भोग करना चाहता है और धर्म को जिसने भोग का एक वाहन बनाया है, ऐसा व्यक्ति केवल यही देखता है कि मेरे भोग को बढ़ाने के लिए शुभ अवसर कौन सा है, शुभ लाभ आपने अनेक जगह देखा होगा, और ये देखता है कि मेरे कष्टों का निवारण करने के लिए किस तरह की उपासना मुझे करनी चाहिए। वो ये अधिक विचार नहीं करते हैं कि भगवान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। तो क्योंकि इस अधिक मास में ऐसे कोई अवसर नहीं है धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए जिनसे कि भोग, भौतिक सुख आदि प्राप्त हो जाए, तो कर्म कांड का पालन करने वाले लोग इस महीने को तुच्छ समझते हैं, यहां तक कि इसका नाम उन्होंने मल मास रखा है, मल के बराबर है ये मास, ऐसा वो मानते हैं, क्योंकि इसके द्वारा कोई भोग नहीं पाया जा सकता। अन्य महीनों में कहीं न कहीं कोई न कोई तो शुभ घड़ी आती है, कोई अच्छा मुहूर्त आता है, कोई ऐसी तिथि होती है जिसमें कि विशेष अनुष्ठान हम संपन्न कर सकते हैं, कोई उत्सव आते हैं, कोई न कोई कर्मकांडी अनुष्ठान हम संपन्न कर सकते हैं, परंतु इस पुरुषोत्तम, इस अधिक मास में हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नाम पड़ गया इस महीने को मल मास। और अधिक मास क्योंकि ये 13वां महीना है, तो इस तरह जो कर्मकांड का पालन करते हैं वो इस अधिक मास को बिल्कुल नहीं मानते, बल्कि सोचते हैं, इसको धिक्कारते हैं। दूसरी ओर जो उपासना कांड या शुद्ध भक्ति के पथ को स्वीकार करने वाले हैं, कृष्ण भक्त हैं, वो इस महीने को बहुत मानते हैं। और जो अधिक मास है या मल मास है, इसका अलग से ही तात्पर्य वो देते हैं, शास्त्रों के आधार पर, भक्ति के शास्त्रों के आधार पर। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनेक धर्म हैं इस पृथ्वी लोक के ऊपर, और इन विविध धर्मों के जो अनुयायी हैं वो ऐसे करते हैं, ऐसे कहते हैं या प्रचार करते हैं कि हमारा तो केवल एक धर्म ग्रंथ है, लेकिन आप लोगों के कितने सारे ग्रंथ हैं, तो आप कौन से ग्रंथ का पालन करेंगे? और वो सही कहते हैं, अनेक ग्रंथ तो हैं, तरह तरह के पुराण हैं, तरह तरह के उपनिषद, आरण्यक इत्यादि हैं। तो भगवान ने क्या गलती की है? बिल्कुल नहीं। भगवान ने इस सनातन धर्म के अंतर्गत विविध प्रकार के शास्त्र इसलिए दिए हैं क्योंकि विविध प्रकार के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। सबकी मनोवृत्तियां, सबकी धारणाएं, सबके विचार करने की जो पद्धतियां हैं, सबकी भावनाएं, सबके उद्देश्य जीवन में सब अलग अलग होती हैं। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको भोग चाहिए ही चाहिए, कोई ऐसे लोग होते हैं जो विरक्त हैं परंतु वो ध्यान करना आदि पसंद करते हैं, कोई ऐसे लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, और भोग के भी तरह तरह के मार्ग होते हैं। इसलिए भगवान ने तरह तरह के ये ग्रंथ दिए हैं मनुष्यों के लिए, और जिसकी जैसी इच्छा, जिसका जैसे झुकाव और मनोवृत्ति, वैसे वैसा वो उस तरह के शास्त्र को स्वीकार कर सकता है। कम से कम वैदिक शास्त्रों को तो स्वीकार कर रहा है। ऐसे करके धीरे 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 से इस जन्म में हो या किसी आने वाले जन्म में हो, वो व्यक्ति जान लेगा कि मुझे और आगे बढ़ना है मेरे आध्यात्मिक पथ में। तो भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि बहुत विशाल होती है, अनेक जन्मों की दृष्टि होती है, इसलिए उन्होंने नाना प्रकार के ग्रंथों को प्रदान किया है। फिर आध्यात्मिक प्रगति करते करते अंततः हर एक व्यक्ति इस भक्ति के पथ तक आ जाता है, परंतु इसे बहुत लंबा समय लगता है। खैर, कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति के दृष्टिकोण से देखने वाले लोग मल मास और अधिक मास को अलग तात्पर्य देते हैं। वैष्णव आचार्यों ने बताया है कि इसे मलमास इसलिए कहना चाहिए क्योंकि हमारे हृदय में जितना भी मल है, यथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब इस महीने में नष्ट हो जाते हैं बहुत आसानी से, यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो। तो ये है मलमास। अधिक मास इसलिए है क्योंकि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से अन्य महीनों की तुलना में कहीं अधिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। यहां तक कि इस महीने में भक्ति करने से शीघ्र ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति सुलभ रीति से कर सकता है। इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास इसलिए है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही नाम इस महीने को प्रदान कर दिया, और इस महीने को स्वीकार कर लिया, अपना लिया और वरदान दिया कि जो भी कोई व्यक्ति इस महीने में, जो कि मेरा महीना है, मेरी भक्ति करता है, वो शीघ्र ही मेरी कृपा प्राप्त कर देगा, कर पाएगा। तो पुरुषोत्तम अधिक मास में कृष्ण भक्त अधिक सेवा करते हैं, अधिक जप तप आदि करते हैं, भगवान की नाम कीर्तन कथा आदि में ज्यादा समय बिताते हैं, क्योंकि भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो पुरुषोत्तम अधिक मास की महिमा का वर्णन अनेक शास्त्रों में है, पद्म पुराण में भी इसकी कथा आती है। आप तो महाभारत की कथा जानते हैं, युधिष्ठिर महाराज और उनके भाइयों को वनवास में जाना पड़ा, कपटी दुशासन शकुनी दुर्योधन आदि ने पांडवों से उनका राज्य छीन लिया युद्ध क्रीड़ा के द्वारा, द्रौपदी का बड़ा अपमान हुआ और उनको वनवास में भेजा गया। वनवास में अनेक वर्षों तक रहे और अंत में वो काम्यवन आके पहुंचे। काम्यवन जो कि व्रज भूमि में है, वृंदावन में। तो जब वहां वो रहे तो श्री कृष्ण वहां पर आए अपने प्रिय भक्तों को मिलने के लिए। जैसे ही श्री कृष्ण वहां पधारे तो पांडवों को जान में जान आ गई। जैसे एक प्यासा आदमी बहुत प्रसन्न होता है जब उसे जल मिल जाता है, एक भूखा आदमी प्रसन्न हो जाता है जब उसको भोजन मिल जाता है, तो उसी प्रकार से पांडव जो कि श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, बहुत लंबे समय से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रहे थे, अब बहुत ही प्रसन्न हुए श्री कृष्ण को सामने देखकर। श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, अपने भक्तों के दुख को सहन नहीं कर सकते हैं। जब उन्होंने पांडवों की दुखद अवस्था को देखा तो उनको बहुत दुख हुआ और फिर उन्होंने दुर्योधन के कपटी कार्यों के बारे में सुना तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया। इतना क्रोध आया कि उसी समय में उन्होंने जोर जोर से घोषणा की कि मैं इसी क्षण उस दुष्ट दुर्योधन की हत्या कर लूंगा। ऐसा क्रोध पांडवों ने पहले देखा नहीं था, ऐसे क्रोध जिसके द्वारा ऐसे लगता था कि शायद पूर्ण ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाए। तो पांडवों ने बहुत शांत करने का प्रयास किया श्री कृष्ण को, अर्जुन ने सांत्वना दी श्री कृष्ण को, अंततः श्री कृष्ण थोड़े शांत हो गए और फिर बैठ के चर्चा करने लगे पांडवों के साथ में। और वो कहने लगे कि मैं आपसे कुछ बताना चाह आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं आपको एक ऐसी कथा बताना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम जान सकते हैं कि आपके कष्टों का कारण क्या है। वैसे ये कथा भी सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्र हुए ऋषियों को बता रहे थे। शौनक ऋषि जो कि उन ऋषियों के प्रतिनिधि थे, उन्होंने सूत गोस्वामी से पूछा कि हे मुनिवर, कृपया ऐसी कोई कथाएं हमें बताइए जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, जिनका श्रवण करने से हमारे हृदय के अंदर जो संसार रूपी अग्नि प्रज्वलित रूप से जल रही है उसका शमन हो जाए, जिससे भगवान के प्रति हमारी भक्ति बढ़ जाए और हम भगवान के धाम में वापस चले जाएं। इस कलयुग में लक्षण बहुत बुरे दिख रहे हैं, तो कृपया ऐसी कोई बातें हमें सुनाइए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कथा सुनाना प्रारंभ किया कि कैसे एक बार नारद जी बद्रिक आश्रम में गए थे, वहां पर नारायण ऋषि का दर्शन उन्होंने किया। नारायण ऋषि तो स्वयं भगवान श्री नारायण ही हैं, ऋषि के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान विभिन्न योनियों में प्रकट होते हैं और कभी कभी मनुष्य समाज में भी प्रकट होते हैं, और मनुष्य समाज में कभी राजा बनते हैं तो कभी ऋषि बनते हैं। तो नारायण ऋषि ये भी भगवान ही हैं जो ऋषि के रूप में अवतीर्ण हुए थे। अपने प्रिय भक्त नर ऋषि के साथ में वो बद्रिक आश्रम में निवास करते हैं। नर नारायण ऋषि कहलाते हैं दोनों। तो नारद जी नारायण ऋषि के पास आए और उनसे निवेदन किया, उनसे कृपा याचना की कि वो कुछ ऐसे अच्छी बातें बताएं जिनसे कि सारे जगत का कल्याण हो, जिससे कि जो विरक्त जीवन जी रहे हैं और जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं दोनों का जिसमें भला हो। फिर नारायण ऋषि ने पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाना प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जब पांडवों के साथ थे तो उन्होंने यही कथा उन्हें सुनाई थी। तो कथा इस प्रकार से है कि एक ऋषि रहा करते थे। वैसे इसके पहले हम चर्चा करेंगे इस महीने के बारे में कि एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था मेधवी, और ये मेधवी ऋषि की एक पुत्री हुआ करती थी, और वो पुत्री इकलौती पुत्री थी इस ऋषि की। परंतु काफी समय तक इस पुत्री का विवाह नहीं हुआ, क्योंकि मेधवी ऋषि अपने तपस्या में, अपने धार्मिक कार्यों में मग्न रहते। इस पुत्री या इस कन्या का महत्व ऐसे है कि आगे चल के पांडवों से बहुत ही संबंधित बात हुई, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने इसके पहले एक और इतिहास बताना ठीक समझा, जिसके द्वारा फिर ये कथा को वो अच्छी तरह से समझ सके। आप तो जानते हैं कि इस भौतिक सृष्टि में भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि हर एक लोक में, हर एक ग्रह में, हर एक काल के लिए कोई ना कोई अधिष्ठाता देव या देवी रहते हैं। जैसे पृथ्वी देवी है, सूर्य देव है, उसी समय उसी तरह काल के लिए, समय के लिए भी कोई ना कोई अधिष्ठाता देव या देवी होते हैं। तो इस अधिक मास की देवी थी, तो ये अधिक मास की देवी बहुत विचलित हो गई थी, क्योंकि सभी लोग उसे मल मास कह के पुकारते थे और धिक्कारते थे। कोई भी मल मास की देवी के पास आना ही नहीं चाहता था, कोई बात भी नहीं करना चाहता था, सब लोग दूर रह रहे थे। तो बिल्कुल ऐसे तिरस्कृत किए जाने पर मल मास की देवी बहुत दुखी हो गई। दुखद अवस्था में वो वैकुंठ चली गई। वैकुंठ में जाकर भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में आश्रय लेकर फूट फूट कर रोने लगी और बोलने लगी कि हे प्रभु, मैं आपका शरण लेने आई हूं और यहां पे शायद मैं अपने प्राण ही त्याग दूंगी आपके चरणों में, क्योंकि मैं देख रही हूं कि कोई मेरा सम्मान नहीं करता, सम्मान की बात तो दूर है, मेरा तिरस्कार लोग करते हैं, मेरा अपमान करते हैं, मुझे तुच्छ समझते हैं, मुझे मल के बराबर समझते हैं, तो मेरा क्या भविष्य है? न मेरे कोई सगे संबंधी हैं, मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती, मेरे कोई रक्षक नहीं है, मेरे कोई पति भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूं, तो मैं जीकर भी क्या करूंगी? इसलिए मैं जीना नहीं चाहती, मैं प्राण त्याग देना चाहती हूं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे आश्रय में आए हो, जो व्यक्ति मेरे आश्रय को ग्रहण करता है वो दुखों से मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम्हें शोभा नहीं देता कि वैकुंठ में आके मेरे शरण को ग्रहण करने के बाद तुम ऐसे शोकग्रस्त हो, ये तो ठीक नहीं है। तो वो कहने लगी मलमास की देवी आगे कि वैसे मेरे लिए क्या भविष्य है, मेरे सामने तो केवल अंधकार ही दिखाई पड़ रहा है। और इस तरह अपने शोक को व्यक्त करने लगी, और जब परिस्थिति असहनीय हो गई मलमास की देवी के लिए, वो गिर पड़ी, बेहोश हो गई। वहां गरुड़ जी भी थे, गरुड़ जी ने हवा देना शुरू कर दिया, पुनः बाह्य चेतना तक मलमास की देवी को लाया। फिर भगवान श्री विष्णु ने मलमास की देवी से कहा कि कोई बात नहीं, हम चलते हैं गोलोक वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं अपने द्विभुज रूप में, वो अवश्य तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। तो फिर मलमास की देवी के हाथ को पकड़कर भगवान विष्णु गोलोक वृंदावन की ओर गरुड़ के ऊपर सवार होकर चले। गोलोक वृंदावन के पास आते ही रोशनी इतनी तीव्र थी, आध्यात्मिक प्रकाश इतना तेज था कि ये देवी उसको सहन नहीं कर पाई, अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान विष्णु ने देवी को अपने पीठ के पीछे रखा ताकि ये रोशनी ज्यादा लगे नहीं। और वहां गोलोक वृंदावन के द्वारपालों ने स्वागत किया भगवान विष्णु का, और फिर वो श्री कृष्ण के सामने आए, और भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण से कहा कि ये है मलमास की देवी, मैं इसे लाया हूं आपके पास क्योंकि ये बहुत दुखी है। फिर से मलमास की देवी फूट फूट कर रोने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, गोलोक वृंदावन आने के बाद कोई दुख से रो रहा है, ये कैसे संभव है? तो कोई चिंता नहीं करो हे देवी, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। जब श्री कृष्ण ने सारी बात सुन ली तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस देवी को यहां तक पहुंचा दिया, आपने जिनको शरण दिया है मैं उनको कैसे त्याग सकता हूं, मैं भी उनको शरण देता हूं पूरी तरह से। तो मैं इस समय ये घोषणा करता हूं कि इस देवी को मैं पूरी तरह से शरण दे रहा हूं, मैं इसे अपना मान के स्वीकार कर रहा हूं, बल्कि मैं इसका पति बनूंगा स्वयं, और हर दृष्टि से इसकी रक्षा करूंगा। और इतना ही नहीं, इसका जो महीना है जिसे आज तक मलमास कहते हैं, मैं अपना नाम प्रदान करूंगा इस महीने को, और आज से इस महीने का नाम होगा पुरुषोत्तम मास, और जो गुण मुझ में हैं वो सब सारे गुण इस महीने में भी होंगे। तो यदि कोई मेरा तिरस्कार करता है, मेरा अपमान करता है, तो उसे जो फल प्राप्त होता है वही फल ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होगा यदि उसने मेरे मास को अर्थात पुरुषोत्तम मास को तिरस्कृत किया तो, यदि इस महीने में वो कोई व्रत का पालन नहीं करता है, कोई विशेष सेवा नहीं करता है, अपमान करता है इस महीने का, तो उसे बहुत हानि पहुंचेगी। इसलिए इस महीने में हर एक व्यक्ति को विशेष मेरी भक्ति करनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे विशेष भक्ति करेगा इस महीने में, उसके पाप शीघ्र ही क्षीण हो जाएंगे, मेरे प्रति भक्ति शीघ्र ही उत्पन्न हो जाएगा, तरह तरह के सद्गुण उसमें प्रकट हो जाएंगे, सारा दिव्य वातावरण उसके जीवन में निर्माण हो जाएगा। इसलिए इस महीने में मेरी भक्ति करना ये अनिवार्य होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए। और जो ऐसा नहीं करेगा वो एक अपराध करेगा। वैसे अनेक महीने हैं, पावन महीने हैं, जैसे माघ है, चैत्र है, कार्तिक है, परंतु इन सारे प्रकार के पावन महीनों से भी अधिक पावन ये मेरा महीना रहेगा, पुरुषोत्तम मास। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे अपने ही मास की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और काफी कहने लगे कि जो व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास का पालन करेगा, अधिक भगवान की भक्ति करेगा, उसे बहुत लाभ प्राप्त होगा, आध्यात्मिक लाभ, और जो नहीं करेंगे तो उनकी बहुत हानि होगी, क्योंकि एक सुनहरा अवसर जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए वो खो बैठेंगे। तो मलमास की देवी अभी बहुत प्रसन्न हो गई, भगवान विष्णु भी बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए पुरुषोत्तम महीना उस समय से बहुत ही लाभप्रद और महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम फिर से लौटते हैं मेधवी ऋषि की कन्या के विषय तक। वो जब बड़ी होती जा रही थी और विवाह नहीं हो रहा था, वो चिंतित होती जा रही थी, परंतु उनके पिता जो है वो बहुत व्यस्त रहते थे अपने तपस्या आदि में, और इसलिए विवाह नहीं कर पाए और एक दिन इनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो ये कन्या बहुत विचलित थी। कन्या सोचने लगी कि मेरे कोई सगे संबंधी नहीं है, मेरे कोई सहेलियां नहीं हैं, जो है उन सब का विवाह हो चुका है, सब अपने अपने जगह चले गए, ना मेरे पिता है, ना मेरे पति हैं, ना मेरे कोई भाई हैं, कोई रक्षा करने वाले नहीं हैं। बहुत विचलित हो गई थी। उस समय दुर्वासा मुनि वहां पर पहुंचे। दुर्वासा मुनि भगवान शिव जी के अंशावतार माने जाते हैं। वो मेधवी ऋषि के मित्र थे। जब उन्होंने सुना कि उनके मित्र का देहांत हो चुका है तो वहां पर चले आए, क्योंकि वो जानते थे कि मेधवी ऋषि की पुत्री अब अविवाहित है और अकेली है। तो दुर्वासा मुनि जब वहां आए तो कन्या ने उनका स्वागत किया, बहुत अपने शोक को व्यक्त किया। दुर्वासा मुनि के हृदय में अनुकंपा हुई इस कन्या के प्रति, और कुछ अच्छे उपदेश देने हेतु दुर्वासा मुनि कहने लगे कि हे पुत्री सुनो, केवल 3 महीनों में अब पुरुषोत्तम मास आने वाला है। ये महीना बहुत विशेष है। इस महीने में तुम श्री कृष्ण की भक्ति करना। समस्त शास्त्रों में पुरुषोत्तम महीने के महिमाओं का वर्णन पाया जाता है, इसलिए इस मौके को खोना नहीं। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण की तीव्रता से भक्ति करने से, व्रत आदि पालन करने से तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए अब कोई लापरवाही नहीं करना। जहां तक मृत्यु की बात है, सभी को मृत्यु का सामना करना पड़ता है, इसलिए शोक नहीं करना, परंतु अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा यदि तुम अब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति इस पुरुषोत्तम महीने में करोगी तो। अब ये कन्या थोड़ी कम बुद्धि की थी, दुर्वासा मुनि के वचनों को समझ नहीं पाई, इन वचनों में विश्वास नहीं आया और कहने लगी, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो मल मास है, मल जैसा ये मास है, इस महीने को तो हम तुच्छ मानते हैं, कोई शुभ घड़ी, कोई मुहूर्त, कोई उत्सव, कोई तिथि यहां नहीं है इस महीने में, इसका तिरस्कार किया जाता है इस महीने का, और आप कहते हो कि इतना महान है ये महीना कि इस महीने में भक्ति करने से हम भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, बल्कि आप झूठ बोल रहे हैं, गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं मुझे। तो दुर्वासा मुनि शिव जी के अंशावतार होने के नाते लोहे के समान होते हैं, जो बहुत जल्दी तरह से ठंडा हो जाता है, जल्दी और गर्म भी हो जाता है। तो दुर्वासा मुनि को क्रोध जल्दी ही आ गया, इतना क्रोध आ गया कि वो शाप देने वाले थे, परंतु बड़े कठिनाई से अपने आप को रोक लिया और कहने लगे कि हे मूर्ख कन्या, तुम मेरे मित्र की पुत्री हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप नहीं दे रहा हूं। तुमने जो अपशब्द मेरे प्रति कहे हैं, मैं उनको मानता नहीं हूं, मैं उनको भूल जाता हूं स्नेह के कारण, परंतु तुमने जो इस पावन महीने के प्रति और स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के प्रति जो अपमान किया है, उसको मैं कैसे भूल सकता हूं, इसके बारे में मैं भी निस्सहाय हूं। जो तुमने अपराध अब किया है, इसका फल तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। और फिर क्या हुआ, तुरंत इस कन्या की जितना भी कन्या का जितना भी सौंदर्य था, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, वो बहुत कुरूप बन गई, सारे पुण्य उसके जीवन से समाप्त हो गए, खत्म हो गए, बहुत बेचैन हो गई, बहुत विचलित हो गई ये कन्या अपनी दशा को देखकर। रोते रोते उसने विचार किया कि मैं आशुतोष शिवजी की उपासना करूंगी, शिवजी बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं, मुझे वो वरदान प्रदान करेंगे। तो ऐसे पुराणों में बताया जाता है कि पूरे 9000 वर्षों तक इस महिला ने तपस्या की, कड़ी तपस्या की, जिसकी कल्पना भी हम इस कलयुग में नहीं कर सकते। 9000 वर्षों के बाद शिव जी इस कन्या के सामने प्रकट हो गए। शिव जी को अपने सामने देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई ये कन्या, चकाचौंध हो गई, उसके होश ठिकाने नहीं रहे कि अरे स्वयं शिव जी मेरे सामने आए हैं। प्रणाम तो किया, स्वागत के दो शब्द तो कहे, ठीक से भी नहीं कर पाए, लेकिन अपने ओर से अपने तरह से कह दिया। शिव जी ने कहा कि हे पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए, कोई वरदान मांगो मुझसे। तो इस समय उत्तेजना के कारण वो कन्या अपने आप को संभाल के रख नहीं पाई और कहने लगी, मुझे पति चाहिए। तो उत्तेजित होने के कारण एक बार नहीं, बार बार कहने लगी, मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, ऐसे 5 बार कह दिया। तो शिव जी ने तुरंत कह दिया कि ठीक है, तुम्हारे 5 पति हो जाएंगे। तब उस समय उस लड़की को पता चला कि अरे रे, मैंने कौन सा बड़ा वो कौन सी बड़ी गलती कर दी। तो शिव जी से कहने लगी वो लड़की कि नहीं नहीं, मैं 5 पति नहीं चाहती, एक ही पति चाहती हूं। लेकिन शिव जी ने कहा कि जो मेरे शब से निकल गया है उसको मैं वापस नहीं ले सकता, ये तो होकर ही रहेगा, परंतु इतना मात्र कर सकता हूं कि इस जन्म में न होकर ये बात तुम्हारे आने वाले अगले जन्म में होगी। फिर इस कन्या का आगे चल के जब देहांत हुआ, फिर अगले जन्म में द्रुपद महाराज के यज्ञ स्थल से वो प्रकट हुई और इसलिए उसका नाम हुआ द्रौपदी। तो श्री कृष्ण पांडवों को बता रहे थे द्रौपदी का इतिहास, पूर्व जन्म का, और फिर द्रौपदी से कहने लगे कि हे द्रौपदी, अब तुम जान लो कि तुम्हें इतना कष्ट क्यों हुआ, तुम्हारा इस तरह से अपमान भरी सभा में, कुरुओं के भरी सभा में क्यों हुआ और अपमानित होकर तुम्हारे पतियों के साथ तुम्हें ऐसे क्यों जंगल में इतने वर्षों तक निवास करना पड़ रहा है, कष्टों को सहन करना पड़ रहा है। तो ये इसका इतिहास है। और फिर युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडवों की ओर देखते हुए कहने लगे कि जब यह पुरुषोत्तम मास बीत गया आपके वनवास के समय, आपने इस मास का पालन नहीं किया, नहीं करने से आपने अनादर किया है इस पुरुषोत्तम महीने का, जो कि मेरा महीना है, और इसलिए आपको इतना कष्ट जीवन में मिला है। अब अगली बार जब पुरुषोत्तम महीना आएगा तो उसमें अवश्य इस महीने का पूरा आदर आप सब करना। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के जीवन में जो दुख आए उसके बारे में इतिहास बताया और बातों बातों में पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन भी किया। हाँ, पांडवों के जीवन में जो कष्ट आए उनको हम अनेक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, अनेक दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। वैसे ये पांडव और द्रौपदी भी, कुंती महारानी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सब भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं। तो उनका सुख दुख जो होता, उनके जीवन में जो सुख दुख होता है वो साधारण कर्म से नहीं होता है। यहां इस जीवन में, इस संसार में हम साधारण व्यक्तियों के जीवन में जो सुख दुख आते हैं वो हमारे पूर्वकृत कर्मों के अनुसार होते हैं। हमने कोई पाप किया होगा तो उसके फलस्वरूप हमें कोई कष्ट या दुख मिलता है, जैसे कोई बीमारी मिलती है, गरीबी होती है इत्यादि। हम कोई पुण्य कार्य करते हैं तो हमें संसार में कुछ सुख या ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। परंतु पांडव ऐसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे जिनके जीवन का सुख दुख कर्म के सिद्धांत के ऊपर निर्भर होता। ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण निर्णय करते हैं किस तरह का सुख और किस तरह का दुख उनके जीवन में आना चाहिए। साधारण कर्म सिद्धांत तो साधारण लोगों के लिए है, परंतु पांडव विशेष हैं, पार्षद हैं भगवान के, इसलिए स्वयं भगवान की योजना से उनके जीवन में कष्ट आते हैं या सुख भी आता है। पांडवों को कष्ट में डालते हैं भगवान श्री कृष्ण सारी दुनिया को सिखलाने के लिए कि देखो, इतना सब कष्ट होने के बाद भी ये मुझे भूले नहीं हैं, बल्कि मेरी भक्ति और भी तीव्रता से कर रहे हैं, ताकि हम सब साधारण लोग जब जीवन के कठिन अवस्थाओं से गुजर रहे हों, हम भी पांडवों का स्मरण करें, भूल न जाए कि पांडवों ने कैसे भगवान की सेवा की थी कठिनाई के समय में। ऐसे अक्सर देखा जाता है दुनिया में कि जब कोई जीवन में कष्ट आता है तो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, उसका मन डामाडोल हो जाता है, श्रद्धा उसकी खत्म हो जाती है भगवान में, वो भगवान को दोषी ठहराता है अपने दुखद परिस्थिति के लिए, ये न जानते हुए कि जिम्मेदार अपने दुखों के लिए वो स्वयं ही है, तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों को ऐसे कष्ट देते हैं हम सबको सिखलाने के लिए। तो खैर ये एक विषय अलग है, परंतु भगवान श्री कृष्ण अपने एक कार्य से अनेक उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। इसलिए पांडवों के उस कठिन अवस्था के पीछे अनेक कारण थे। उनमें से बाह्य दृष्टि से ये एक कारण था कि उन्होंने पुरुषोत्तम मास का पालन नहीं किया था। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने प्रिय मास पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन किया। इस महीने में विशेष करके भक्तों को चाहिए कि भगवान के नाम का उच्चारण वो जितना हो सके उतना करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का उच्चारण अधिक से अधिक करें। श्रीमद् भागवत से, भगवत गीता से अधिक श्रवण करें, पाठ करें। भागवत कथा का श्रवण करना, श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना ये अति लाभदायक होता है वैसे भी, और विशेष करके इस महीने में, क्योंकि ये पुरुषोत्तम महीना है। तो अनेक वैष्णव भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ करते हैं प्रतिदिन, जिस अध्याय का शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। साथ साथ में भगवान जगन्नाथ की जो जगन्नाथ अष्टकम है इसका भी पाठ करते हैं, क्योंकि जगन्नाथ भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। और साथ साथ और भी राधा कृष्ण के जितने भी भजन, सुंदर सुंदर भजन हैं, गीत हैं, वो भी भक्त लोग गाते हैं। साथ साथ शाम को दीप भी अर्पण करते हैं भगवान को। दान देना, थोड़ी बहुत तपस्या करना, इंद्रिय तृप्ति नहीं करना या कम से कम करना, ऐसे कार्यों का महत्व इस महीने में बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम बहुत लाभ उठाएं इस महीने का, हम इसे मलमास न समझें, हमें इसे सबसे पावन महीना जानकर इसमें अधिक से अधिक भक्ति करके अधिक से अधिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर लेना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। यहाँ हमारे राधा गोकुलानंद मंदिर में भी प्रतिदिन पुरुषोत्तम महीने में भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ होता है, साथ साथ दीपदान होता है, राधा कृष्ण के सुंदर भजन भी गाए जाते हैं, संकीर्तन भी होता है। और इस आने वाले 8 दिनों में अंतिम दिन जो है पुरुषोत्तम महीने के, इसमें भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। पुरुषोत्तम महीने में श्रीमद् भागवत का पाठ करना और श्रवण करना क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस समय उपयुक्त है कि हम श्रीमद् भागवत के बारे में कुछ 2 शब्द कहें, क्योंकि श्रीमद् भागवत भी कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। जिस तरह से श्री कृष्ण समस्त देवों में से सर्वश्रेष्ठ हैं, जिस तरह से पुरुषोत्तम मास समस्त मासों में या महीनों में से सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक उसी तरह से श्रीमद् भागवत भी समस्त ग्रंथों में से श्रेष्ठ है। निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदं तथा। श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है कि जिस तरह से अच्युत या श्री कृष्ण समस्त देवों में से सर्वश्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार से समस्त पुराणों में से भागवत पुराण श्रेष्ठ है, जिस प्रकार से समस्त वैष्णवों से शिव जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से वैसे ये भागवत या गंगा जो है वो सारे नदियों में से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से ये पुराण भागवत पुराण समस्त पुराणों में से सर्वश्रेष्ठ है। ये श्री कृष्ण का ही रूप है, साहित्य रूप है। श्री कृष्ण से पूर्णतया अभिन्न है। जिस तरह श्री कृष्ण समय समय पर प्रकट होते हैं और फिर अप्रकट हो जाते हैं, जिस तरह श्री कृष्ण विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत ये ग्रंथ भी समय समय पर प्रकट होता है, अप्रकट होता है, और इतना ही नहीं अलग अलग रूपों में भी प्रकट होता है। अब जिस श्रीमद् भागवत को हम पढ़ते हैं, जिसके 18,000 श्लोक हैं, ये ऐसा नहीं है कि हर बार श्रीमद् भागवत का प्राकट्य ठीक इसी प्रकार होता है। है वही श्रीमद् भागवत, परंतु अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से ये प्रकट होता है ग्रंथ, जैसे श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण से अभिन्न होने के नाते के कारण जैसे श्री कृष्ण दिव्य हैं और अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, ठीक उसी तरह ये श्रीमद् भागवत भी दिव्य है और अपनी स्वेच्छा से प्रकट होता है। श्री कृष्ण पहले भी कई बार आ चुके हैं और भविष्य काल में भी आते रहेंगे, ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का प्राकट भी अनेकों बार हो चुका है अनादि काल से, और अनंत काल तक ये चलता रहेगा। जब तक सृष्टि रहेगी, भागवत का प्राकट्य इस सृष्टि में चलता रहेगा। जिस भागवत को हम जानते हैं, जिसे हम श्रीमद् भागवतम कहते हैं, जिसके 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध हैं, इसका संपादन या इसकी रचना भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार श्रील व्यास देव जी ने की थी लगभग 5,000 वर्ष पूर्व। परंतु ये पहली बार नहीं था कि श्रीमद् भागवत की रचना हुई थी। वैसे शास्त्र में वर्णन है कि अनेकों बार श्रीमद् भागवत की कथा हुई है और वेद व्यास जी ने इन समस्त कथाओं के आधार पर एक और श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना कर ली। एक नया संपादन समझिए श्रीमद् भागवत का। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी को भगवान श्री नारायण ने भागवत का उपदेश दिया था, चतुःश्लोकी भागवत कह के। ब्रह्मा जी ने आगे चल के अपने शिष्य नारद जी को भागवत सुनाया था, नारद जी ने व्यासदेव जी को सुनाया था, व्यासदेव जी ने जब नारद जी से भागवत सुनी तो उन्होंने फिर संपादन किया और इस विशेष रूप में इसको प्रकट किया। साथ साथ उधर व्यासदेव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को भागवत कथा कही, सुखदेव गोस्वामी ने आगे चल के राजा परीक्षित से ये कही, राजा परीक्षित ने मृत्यु के बस थोड़े समय पहले संक्षिप्त रूप में भागवत की कथा अपनी माता उत्तरा से कही। सुखदेव गोस्वामी ने जो राजा परीक्षित से कही ये कथा कही थी, अनेक ऋषि मुनि वहां एकत्र थे, उनमें से सूत गोस्वामी भी एक थे। सूत गोस्वामी ने ये ग्रहण कर ली। आगे चल के उन्होंने नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को ये भागवत कथा कही। उधर भगवान ने चतुष्कुमारों को भी भागवत कथा सुनाई। चतुष्कुमारों ने भी नारद जी को भक्ति भागवत सुनाया। सांख्यायन ऋषि को भी सुनाया उन्होंने। भगवान नारायण ने उधर शिव जी को भी भागवत कथा सुनाई। शिव जी ने आगे चल के पार्वती देवी और शुक इन दोनों को भी भागवत कथा सुनाई। उधर पराशर ऋषि ने मैत्रेय मुनि अपने शिष्य को भागवत कथा सुनाई, मैत्रेय मुनि ने विदुर को सुनाई ये कथा, उद्धव जी को बृहस्पति ने सुनाई। तो ऐसे देखा जाए तो श्रीमद् भागवत के अनेक संपादन हैं, बल्कि ऐसे कहा जाता है कि स्वर्ग लोक में भी ये भागवत उपलब्ध है जिनके लाखों श्लोक हैं। इस पृथ्वी लोक के ऊपर जो श्रीमद् भागवत उपलब्ध है उसके केवल 18,000 श्लोक है, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनेक संपादन होने के कारण वो भी अनंत है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण अनंत है, जैसे वेद अनंत है, वैसे ही श्रीमद् भागवत भी अनंत है। हर दृष्टि से देखा जाए इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि साहित्य रूप में ही ये श्री कृष्ण स्वयं है, साक्षात श्री कृष्ण है। वैसे ओमकार प्रणव ये सारे सृष्टि का उद्गम माना जाता है। ओमकार भी भगवान श्री कृष्ण का ही एक ध्वनि रूप है, ध्वनि रूप में अवतार समझ लीजिए। प्रणव ओमकार से उत्पन्न हुआ गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र से उत्पन्न हुए सारे वेद शास्त्र, वेदों का निचोड़ है वेदांत सूत्र, जिसे ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं या बादरायण सूत्र भी कहते हैं। समस्त वेदों का जो निचोड़ है सूत्र रूप में व्यासदेव जी ने वेदांत सूत्र के रूप में लिखा, परंतु ये वेदांत सूत्रों को समझना बहुत मुश्किल है। इतने संक्षिप्त रूप में ये बातें कही गई हैं कि अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आता कि इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो इस बात को जानकर व्यासदेव जी ने वेदांत सूत्र के ऊपर एक टीका लिखी, और वो टीका है श्रीमद् भागवत। क्योंकि वेदांत सूत्र और श्रीमद् भागवत दोनों के रचयिता एक ही व्यक्ति हैं व्यासदेव, और व्यासदेव जी ने ही ये श्रीमद् भागवत की रचना की है, इसलिए वेदांत सूत्र के ऊपर अलग से टीका लिखने की आवश्यकता नहीं है वास्तव में, क्योंकि श्रीमद् भागवत ही पर्याप्त है अपने आप में। वैसे व्यासदेव जी ने अनेक ग्रंथों की रचना करने के बाद, यथा चार वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत आदि, फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरा मन क्यों विचलित है। ठीक उसी समय उनके गुरु नारद जी उनके सामने आए, तो नारद जी को पता था। नारद जी ने पूछा व्यासदेव जी से कि अरे ब्राह्मण, क्या कारण है? आपने इतने सारे वेदों की रचना की, वेदांत सूत्र, महाभारत, उपनिषद, ऐसे इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की जिससे कि व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल सके, ज्ञान मिल सके, परंतु आप विचलित क्यों हो? फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं हुए हो आप? तो उस समय व्यासदेव जी ने कहा कि स्वयं आप ही त्रिकालज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो कृपया आप ही बताइए कि क्या कारण है इसके पीछे। तो नारद जी ने कहा कि हे मुनिवर, आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं, भगवान ने आपको वेदों की रचना करने के लिए विशेष शक्ति प्रदान की है, तो हम क्या कह सकते हैं? आपका जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। परंतु हमें यह भी कहना चाहिए कि आपने एक गलती भी की है, और वो गलती क्या है कि आपने जिन शास्त्रों की रचना की है उनमें से अधिकतर ये कर्मकांड के शास्त्र हैं। हालांकि जो व्यक्ति इन कर्मकांड के शास्त्रों का पालन करते करते प्रगति कर लेते हैं, धीरे से अनेक जन्मों के बाद भगवान कृष्ण के शरण में पहुंच जाते हैं, फिर भी ऐसे लगता है कि कहीं इन कर्मकांड ग्रंथों के द्वारा लोग कहीं पथभ्रष्ट तो न हो जाएं। आपने धर्म के नाम पे लोगों को भोग से भोग के प्रति आकर्षित कर दिया है। अब लोग धर्म को भोग का वाहन समझ बैठेंगे, क्योंकि आपने वास्तविक मानसिक शांति के लिए जो उचित है उस विषय का वर्णन नहीं किया है। और वो कौन सा विषय है? वो है श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं। श्री कृष्ण की कथा करो आप, जो कि दिव्य है, मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है और आत्मा को इस जड़ जगत से मुक्त कराने वाली है, शुद्ध भक्ति प्रदान कराने वाली है। आप इनका वर्णन करो। वैसे व्यासदेव जी ने अवश्य श्री कृष्ण का उल्लेख तो अनेक ग्रंथों में किया था, श्री कृष्ण लीलाओं का भी वर्णन किया था, परंतु मुख्य रूप से नहीं, गौण रूप से किया था। अनेक कथाओं में श्री कृष्ण की कथा भी एक थी, इधर उधर अनेक व्यक्तियों की प्रशंसा करते हुए, उनकी चर्चा करते हुए श्री कृष्ण की भी कर ली। तो श्री कृष्ण के ऊपर इतना जोर नहीं दिया था अब तक श्रील व्यासदेव जी ने। तो नारद जी ने कहा, अभी आपको चाहिए कि आप ये श्रीमद् भागवत की रचना करें, जिसमें केवल श्री कृष्ण के ऊपर आप जोर दें। प्रधान विषय, बल्कि एकमात्र विषय श्रीमद् भागवत के होने चाहिए श्री कृष्ण और उनकी दिव्य लीलाएं। और फिर जाके व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। न केवल वो स्वयं पूरी तरह से संतुष्ट हुए, परंतु इस श्रीमद् भागवत को सुन के प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति उसी संतुष्टि को, आध्यात्मिक आनंद को और सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, केवल भागवत के श्रवण करने मात्र से। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। तो भागवत में कहा गया है कि केवल श्रीमद् भागवत के श्रवण करने मात्र से हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत हो जाएगा और शोक, मोह और भय, ये तीनों चीजें नष्ट हो जाएंगी। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तत् रसामृत तृप्तस्य नान्यत्स्याग्रतिः क्वचित्। फिर से श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है जिसको अब आप पढ़ रहे हैं, ये सार समस्त वेदांत का सार है। सर्व वेदांत सारम ही, एक दूसरे श्लोक में कहा गया है, सारम सारम समुद्धिताम, वेद शास्त्रों के सार का सार है ये। श्री भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य, तो जिस व्यक्ति का हृदय इस श्रीमद् भागवत के कृष्ण कथारूपी अमृत से, हृदय उसका तृप्त हो चुका है, तो वो व्यक्ति अन्य शास्त्र को क्यों पढ़ने जाएगा या सुनने जाएगा। नान्यत् स्यात् रथ क्वचित्, अन्य किसी भी ग्रंथ का पाठ करने की आवश्यकता उसको नहीं रहेगी। श्रीमद् भागवत का पाठ करते करते वो पूरी तरह से संतुष्ट रहेगा। तो ऐसे श्रीमद् भागवत के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। श्रीमद् भागवत का जो पाठ करता है वो वास्तव में परमहंस बन जाता है। परमहंस अर्थात इस जड़ जगत, इस भौतिक सृष्टि के परे हो जाता है। इसलिए इस ग्रंथ को परमहंस संहिता कहते हैं। ये परमहंसों के लिए संहिता है जिसमें केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत आचार्य, बड़े आचार्य रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि श्रीमद् भागवत के बारे में सबसे सुंदर बात कौन सी है अन्य ग्रंथों की तुलना में, तो उन्होंने उत्तर दिया कि श्रीमद् भागवत सबसे सुंदर ग्रंथ इसलिए है क्योंकि ये श्रीमद् भागवत अपने अनुयायियों को केवल एक बात बताता है, और वो क्या है कि निस्वार्थ भाव से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करो, बस और कोई बात नहीं। इसलिए ये ग्रंथ इतना विशेष है, इतना शुद्ध है, इतना पावन है, इतना पूजनीय है हमारे लिए। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में ही बताया गया है, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत प्रयोन्मूलनम। इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में उन समस्त ग्रंथों को त्याग दिया गया है जो कि स्वार्थी धर्म है। तो भागवत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कर्म कांड भी एक स्वार्थी धर्म है, क्योंकि व्यक्ति भगवान के पास जाता है कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। इसलिए इन शास्त्रों का, इन धर्मों का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। जहां भी कोई स्वार्थ आता है तो वहां सब नष्ट हो जाता है। हमारे दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं, हम किसी स्वार्थी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि अरे रे ये कितने स्वार्थी आदमी हैं, अच्छी भावना उत्पन्न नहीं होती है हमारे मन में उनके प्रति। परंतु जब किसी निस्वार्थ व्यक्ति से हम मिलते हैं कितना अच्छा लगता है। हम सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम दिखाई पड़ते हैं दुनिया में। तो वास्तविक सौंदर्य है निस्वार्थीपन। शारीरिक रूप से व्यक्ति कोई भी जितना भी सुंदर क्यों न हो, परंतु यदि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके निस्वार्थ न हुआ हो तो उसका सौंदर्य किस काम का। इसलिए ऐसे तथा कथित धर्मों को श्रीमद् भागवत ने त्याग दिया है। इसलिए श्रीमद् भागवत के धर्म को भागवत धर्म कहा गया है। ये भी धर्म है परंतु सर्वोच्च धर्म है। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, वो कहना चाहते हैं कि समस्त धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरे शरण में आओ हे अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि हमें धर्म को ही त्यागना चाहिए। भगवान कहना चाहते हैं केवल सुंदर धर्म को स्वीकार करो, इस भागवत धर्म को स्वीकार करो और सुंदर बन जाओ मेरी आंखों में। भगवान की आंखों में यदि हमें सुंदर बनना है तो अपने आप को अच्छे अच्छे कपड़े गहने से सजा के हम सुंदर नहीं बनेंगे भगवान के सामने। भगवान के सामने सुंदर बनना है तो हमें ये भागवत धर्म को स्वीकार करना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य, इन समस्त कर्मकांडीय ग्रंथों को, इन तथाकथित धर्मों को त्याग के इस भागवत धर्म को स्वीकार करना चाहिए। सनातन धर्म के अंतर्गत जितने भी धर्म हैं उनमें से ये भागवत धर्म श्रेष्ठ है। इसलिए इस भागवत धर्म जो है यही वास्तविक सनातन धर्म है। और ये क्या है भागवत धर्म, माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरे शरण में आओ हे अर्जुन। तो ये है श्रीमद् भागवत। वास्तवम अत्र वस्तु, ये असली वस्तु की चर्चा करता है। वेद्यम, जिसको जानने से तापत्रय उन्मूलनम, हमारे हृदय में तो त्रिविध ताप हैं, जो तरह तरह के कष्ट हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस जगत में सुख की प्राप्ति करना चाहता है, सच्चे आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, जीवन को सफल बनाना चाहता है, उसे इस श्रीमद् भागवत के ग्रंथ को स्वीकार करना चाहिए, जो परमहंस संहिता है। इदम भागवतम नामम पुराण ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्म संहिता, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, साहित्य रूप में अवतार है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह से भिन्न नहीं माना जाता। 12 स्कंधों में से जो पहले 2 स्कंध हैं, वो श्री कृष्ण के चरण कमलों की के बराबर हैं। और चलते चलते धीरे धीरे से और जो भी स्कंध हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग शरीर के अवयवों से मिलते जुलते हैं। और जो दशम स्कंध है भगवान का, वो है उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनका मुखारविंद। 11वां स्कंध है उनका कपाल, और 12वां स्कंध है उनका सिर। तो श्रीमद् भागवत पूरी तरह से श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो वही आदर, वही सम्मान, वही भक्ति हमारे हृदय में श्रीमद् भागवत के प्रति रहनी चाहिए, जो कि श्री कृष्ण के प्रति है। पद्म पुराण में भागवत महात्म्य का वर्णन आता है, काफी लंबा है। ये संपूर्ण भागवत महात्म्य का वर्णन तो हम नहीं करेंगे, परंतु संक्षेप में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम कल प्रारंभ में सुनाएंगे आपको, ताकि हम जान लें कि वास्तव में भागवत ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ क्यों है। तो अवश्य आप सब यहां पर आइएगा कल शाम, और इस भागवत कथा को हम जारी रखेंगे। सर्वप्रथम भागवत महिमा सुन के, और उसके बाद फिर हम भीष्म देव की कथा, जो कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में वर्णित है, वो हम सुनेंगे। और आने वाले एक सप्ताह में हम भीष्म देव के संदर्भ में और भीष्म देव के उपदेशों से भी बहुत कुछ सीख पाएंगे। आप सब यहाँ आपका मूल्यवान समय निकाल कर आए, इसलिए आप सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आशा करते हैं कि आप आने वाले 7 दिनों में भी आकर यहाँ पे इस सभा की शोभा बढ़ाएंगे, क्योंकि आप जैसे श्रद्धालु श्रोतागण नहीं होंगे तो फिर कथा की शोभा नहीं होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब थोड़ी सूचनाएं हैं।
हरे कृष्ण, कृपया भक्त अपने स्थान पर बैठे रहें। यह हमारा परम सौभाग्य है कि श्रीमान परम पूज्य भक्तिरस अहमद स्वामी महाराज की कृपावश आज इस श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है। यह कथा आने वाले 7 दिनों तक और चलेगी, तो आशा करते हैं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ उपस्थित रहेंगे। श्रीमान परम पूज्य भक्तिरस अहमद स्वामी महाराज पिछले 25 से भी अधिक वर्षों से इस्कॉन से जुड़े हुए और इंजीनियरिंग और MBA का शिक्षण पूरा करने के बाद कुछ समय के लिए उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनी में सेवा की। तत्पश्चात उन्होंने निर्णय लिया कि अपना जीवन कृष्ण के चरणों में अर्पित करें, और इसी हेतु कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए वो इस संस्था से जुड़ गए। कई वर्षों से वह नियमित तौर से रशिया, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य स्थानों पर कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं, और महाराज जी भारत के अन्य शहरों में भी जाते हैं जहाँ पर भक्तगण उनके प्रवचन सुनने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। पिछले कई वर्षों से बेलगाम शाखा के श्री राधा गोकुलानंद मंदिर के वह अध्यक्ष भी हैं, और उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर कृष्ण भावनामृत का प्रचार बड़े पैमाने पे हो रहा है। इसी के अंतर्गत बेलगाम से कुछ ही दूरी पर गोकुल धाम नामक एक विकल्प का प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर वैदिक मूल्यों पर आधारित जीवन शैली का प्रारंभ यहाँ के भक्तों के द्वारा हो चुका है, और कृष्ण को केंद्र में रखते हुए गायों का संरक्षण करते हुए जो वैदिक सभ्यता है इसको हमें कैसे जीना है इसका हम लोग यहाँ पे रूप देख सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं महाराज जी का कि उनकी कृपावश ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। साथ ही साथ आप सबका भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, और आशा करते हैं कि आने वाले 7 दिनों तक आप इससे भी ज़्यादा संख्या में उपस्थित रह के इस कार्यक्रम का लाभ लेंगे। अगर यहाँ बैठने की व्यवस्था में कुछ कमी है तो नीचे भी व्यवस्था की गई है, वहाँ पर वीडियो स्क्रीन और चेयर्स रखे हैं तो आप नीचे भी बैठ सकते हैं। और जैसे कि बताया कि कथा आने वाले 7 दिनों तक चलेगी। कथा 6 बजे ठीक शुरू होगी, उसके पहले 5:30 से 6 बजे कीर्तन का समय है। अगर आप समय पर आएंगे तो इसका लाभ हम ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। तो आपसे विनती है कि 6 बजे से पहले अपने स्थान पर बैठ जाएं। जैसे कि बताया कि यहाँ पर अभी दीपदान भी होगा, उसके पहले भजन प्रस्तुत किया जाएगा। आज का जो प्रसाद की धनराशि की सेवा है वो मुकुल कवात्रा और उनके परिवार की तरफ से की गई है, तो हम विनती करेंगे कि वे आगे आकर महाराज जी के करकमलों से अपनी छोटी सी उपहार ले। तो मुकुल कवात्रा या परिवार की तरफ से कोई अन्य सदस्य उपस्थित है तो वह आगे आए, और अगर आप भी कोई ऐसी धनराशि की सेवा करना चाहते हैं प्रसाद के अलावा तो नीचे हमारा डोनेशन काउंटर है, वहां पर आप अपनी सेवा कर सकते हैं। तो हम इनका धन्यवाद देना चाहेंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल। अभी भजन होगा और उसके बाद हम आपकी सूचना के लिए बताना चाहेंगे कि बीच में 4 टेबल्स मेज रखे गए हैं, तो वहाँ पर दीप भी रखे हैं, और जो यहाँ स्वयं सेवक उपस्थित है वॉलेंटियर्स वो आपको मार्गदर्शन करेंगे कि अपने स्थान पर ही रह के आप भगवान को दीप अर्पण करें। और दीप अर्पण करने के पश्चात ऑल्टर यानी जो वेदी है उसके दाएं भाग यानी राइट साइड से नीचे जाने का रास्ता है, वहां से आप जाकर प्रसाद की सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। अब हम एक भजन गाएंगे, साथ साथ में कुछ चित्र भी होंगे। इस भजन का नाम है श्री चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम। वैष्णव इस भजन को अक्सर इस पुरुषोत्तम महीने में गाते हैं। आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि हम अब किसी एक चोर का गुणगान करने वाले हैं, परंतु ये कोई साधारण चोर नहीं है, समस्त चोरों में से सबसे बड़े चोर है। चौराग्रगण्य अग्रगण्य सबसे बड़े चोर, तो उनकी महिमा का गान इस भजन में हम सुनेंगे। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां जदुकूल चौरम व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि क्षीराधिकाया हृदयस्य चौरम् नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम् पदाश्रितानां च समस्तचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम् केनाप्यहो भीषण चौर ईदृक् दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामापि हरत्यशेषम् गिरिप्रसारानपि पापराशीन् आश्चर्यरूपो ननु चौर ईदृक् दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेव बलायसे कुत्र भृतोऽद्य चौर त्वं भक्तिदां नासि मया निरुद्धः कृष्णसि घोरं यमपाशबन्धं विनसि भीमं भवपाशबन्धम् छिनसि सर्वस्य समस्तबन्धम् नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचितिमं निदण्डम् तमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धन निश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौरहृदयान्न हि मोचयामि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री चौरा गगण्य पुरुषाष्टकम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्णा। कुछ ही समय में पर्दा खुलने वाला है, तो आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। कृपया अपने स्थान पर ही बैठे रहें, क्योंकि जो हमारे वॉलंटियर्स यानी स्वयं सेवक है वो आपको निर्देश देंगे, उसके अनुसार ही आप अपना कार्य अगला शुरू करेंगे, क्योंकि